आप सुन रहे हैं उपन्यास मैला आंचल, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु और इसे स्वर दिया है आपके अपने दीपक यादव ने। तंत्रिमा टोली में आज घमाघम पंचायत हो रही है। बहुत दिनों की बंदिश है कि पंचायत में कोई भी घर की बोली नहीं बोले। काहे कूहे यानी कचरा ही मुगला ही जितना बोल सको अच्छा है। पंचायत में कोई हटा नहीं सकता। लौजमानों के दल ने रंपेरिया के दासिन होने का घोर विरोध किया है। खेल बात है, जात की ठट्ठा है। जब जिसका मन हुआ किसी की रखैलिन बन गई, दासिन बन गई, रंडी बन गई। आज गर्भू भी गर्म होकर बोलता है, पंचायत में सबों को बोलने का हक है, इसीलिए घमाघम पंचायत हो रही है। कहाँ है रंपेरिया की माए? सबों की निगाह टट्टी की आड़ में खड़ी औरतों पर जाती है। रमजूदास की स्त्री ककार कर गला साफ करती है, रंपेरिया की माए को क्या कहते हैं? तुम मत बोलो, धान न बोले बोले भूसा टन, हम बोलेंगे ही। रमजूदास की स्त्री उठ खड़ी होती है, लगता है आज मारपीट भी होगी। कहां उचित हो नोखे, छड़ीदार काहे बने हो? हाँ मारने का हो छड़ी, जोरा छड़ी से पीटे वो दोगला का बेटा। रंपेरिया की माए के मुंह में बोली नहीं तो आज घोंगे का भी मुंह खुला है। रंपेरिया जवान है, उसके जो जी में आवे कर सकती है। पंचायत में तो बड़ा फड़फड़ करते हो गर्भू, रंपेरिया तो तुम्हारी भतीजी लगेगी ना? बोल, खोल दे बात। सात बेटे का बाप है चित्तन, इससे पूछिए कि रंपेरिया के माए की मचान पर दिन रात भूख प्यास भूलकर पेट के बल क्यों पड़ा रहता है, यही निसाब है। अरे जवान जिहान की बात हो तो कहा जा सकता है कि एक दिन पैर फंस गया, इस पर घुर घुर बूढ़े की ये चाल। चुप रहो, ए चुप, कहा चित्तन? सिर में तो अब एक भी काला बाल खोजने पर मिलेगा नहीं, और ये तेजी कहे जी चित्तन, क्या कहती है रंपेरिया की माए? चित्तन का तोतर हवा बेटा गरम हो जाता है, मुंह संभाल कर वो मारो, पकड़ो, हे ए लगाओ गले में कपड़ा, मारो झाड़ू ऊपर से, सान दिखाता है। नोखे और उचित दास छड़ीदार हैं। पंचायत जब घमाघम होने लगती है तब वे दोनों छड़ी हाथ में लेकर नचाते रहते हैं। नोखे और उचित दास चेतन को पकड़कर गले में कपड़ा लगा देते हैं। महंगूदास, चेथरु, मुसहरु, अनपु और घोतन बीच बचाव करते हैं, मारो मत, सभी बूढ़े एक तरफ हैं। एक आवाज आती है, अब रंपेरिया की माए के बदले चित्तन दास की पंचायती होती है। छी छी, लात से डूब मरने की बात है, इस बार 5 ही रुपया जरिमाना हुआ, सस्ते छूट गए। चित्तन दास को 5 रुपये जुर्माना हुआ है और उसके तोतरावा बेटा को 5 बार कान पकड़कर उठने बैठने की सजा। नोखे गिनता है, 1, 2, 3, 4, 5, बस बस। रंपेरिया की माए को एक साम भोज देना होगा, महन साहब जात ले रहे हैं तो भात दें, क्या कहती है रंपेरिया की माए? देगी? तब ठीक है, बोलिए पंच परमेश्वर, क्या विचार? जो 10 का विचार, 10 का विचार हो गया, रंपेरिया दासिन बन सकती है। जाति का बंदिश में जरा ढील देने से सब गड़बड़ हो जाता है, इसी तरह बराबर पंचायत होती रहे तब तो। अभी ये भोज तो फोकट में चला जाता हाथ से। रमजू की स्त्री रंपेरिया की माए के आंगन में बैठी समझा रही है रंपेरिया को, जब दूध की छाली और माल भोग केला खाकर आंख पर चर्बी चढ़ जाएगी तब मौसी को पहचानोगी भी नहीं। महन से कह देना जोड़ी साड़ी से काम नहीं चलेगा, दही खिलाने से बाकी मोजर नहीं होगा, कटसर लेकर छोड़ेंगे। रंपेरिया हंसती है, उनको तो जो कहेंगे करेंगे, मगर कोठारिन कैसी पगली है रे? कोठारिन वो कैसी, अब तो कोठारिन तू है, इसी मुंह से मठ पर रहेगी रे। लक्ष्मीनिया को कम मत समझो, उसका जहर चौवा यदि नहीं उखाड़ सकी तब तो तुम्हारा महंत सब दिन खंजड़ी बजाकर फटकनाथ गिरधारी गाता रहेगा। पगली, इसी लुहर मुंह से सुनती है रे रंपेरिया, कहाँ गई उठकर? शायद महंत आया है, उसकी माँ पुकारती है, साहेब बंदगी हो महंत, पिछवाड़े में कहाँ छुपे हो, अब तो तुम अपने आदमी हो, इधर आओ। रंजू की स्त्री आंख टीप कर मुस्कुराती है। महंत साहेब रंपेरिया के साथ केला बाड़ी से निकलकर आंगन में आते हैं। पीढ़ी दो रे, बैठिए, जात वाले तो भात मांग रहे हैं, हमने तो कबूल लिया है, रमपेरिया की माए चिलम फूंकते हुए कहती है। लक्ष्मी से पूछेंगे, मैन साहेब आंखें नीचे करके कहते हैं। रमपेरिया की माए अब उनकी सास है, सास के सामने जरा लिहाज से बातें करनी चाहिए। क्या बोले? रमजू की स्त्री फटे कनस्तर की तरह झनझना उठती है। लक्ष्मी से पूछेंगे, रमपेरिया की माए सुनती हो? हम कहा था ना, उसने तो इनको भेड़ा बना लिया है। अरे महंत साहेब, लक्ष्मी कौन होती है जो आप उससे पूछिएगा? नहीं, वो बोली है, बहन साहेब बुरा मत मानिएगा, आप हिजड़ा हैं। रमजू की स्त्री जाने के लिए उठ खड़ी होती है। रमपेरिया को लक्ष्मीनिया की लौंडी बनवाएंगे महन साहेब, हम सब समझ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, डम्पियाड़ी जो कहेगी वही होगा। रामदास जी के दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। डम्पियाड़ी जो कहेगी, महन साहब हर बात में अब कहते हैं। जाने डम्पियाड़ी, रमपेरिया क्या जानती है। लक्ष्मी कुड़ जाती है। साल भर तो उसे मटके नेम टेम सीखने में ही लग जाएगा, हाथ की सभी उंगलियों को सही सही गिन भी नहीं सकती है, और उसके पास जन मजूरी का हिसाब है। सतगुरु हो, सतगुरु हो। जिस दिन से रमपेरिया मठ पर दासीन होकर आई है, लक्ष्मी का मुंह हांडी की तरह लटका रहता है। महंत रामदास सब कुछ समझते हैं। रमपेरिया को मजूरों की मजूरी का धान नापने को कहते हैं महंत साहेब। नहीं जानती है हिसाब किताब तो समझा दो, सिखावेगी पढ़ावेगी तो कुछ नहीं, बस खाली लचकर झाड़ती रहेगी। मैं लचकर झाड़ती हूँ? सतगुरु हो, मुझे अपने पास बुला लो प्रभु। अरे अभी उसकी देह में एक मन साबुन धसो, तब कहीं उसके शरीर में प्याज लहसुन की गंध कम होगी। भोर को उठना सिखाओ, मुंह तो कभी धोती भी नहीं है, बीड़ी पीती है, डोल डाल से आकर नहाती भी नहीं है, जूठे हाथ से बीजक उठाती है। मैं क्या सिखाऊंगी पढ़ाऊंगी? तुम क्या कहते हो, आंचल में चाबी लटकाए बिना कुछ नहीं सीख सकती? तो लो ना चाबी अपने भंडार की, मुझे चाबी लटकाने का शौक नहीं है, जानते हैं सदगुरु। लक्ष्मी झन से चाबी का गुच्छा फेंक देती है। महंत रामदास देखते हैं, ये तो सिर्फ गोदाम घर की चाबी है, संदूक की चाबी कहाँ है? चाबी काहे फेंकती हो, बात बात में इतना गुस्सा होने से कैसे काम चलेगा? महंत साहब गंभीर होकर कहते हैं, तुम मेरी गुरुमाई हो, रमपियाड़ी को रास्ते पर लाना तुम्हारा काम है। देह का मैल भी मैं ही छुड़ा दूंगी, कपड़ा भी मैं ही साफ कर दूंगी। 10 दिन भी नहीं हुए हैं, गद्दी घर के दीवार पर थूक खकार के ढेरी लग गई, अधजली बीड़ी के टुकड़ों से घर भरा हुआ है, वो भी मैं ही साफ करूंगी। अब ये मठ नहीं सुअर का खुहार है, खुहार। तुमको रमपियाड़ी के देह का मैल छुड़ाने के लिए कहेंगे? हम पागल नहीं है, तुम बाबू बालदेव की गर्दन की मैल छुड़ाओ, महंत रामदास क्यों छोड़ देंगे? सच्ची बात तो लोग अपने बाप के मुंह पर भी नहीं देते हैं। बालदेव जी का नाम मत लो, क्यों नहीं लेंगे? मठ को सुअर का खुहार बनाया कौन? मैंने बनाया है। हाँ तुमने बनाया है, मेरा भीतर जल रहा है, बात मत बढ़ाओ। भीतर जलता है तो मारकर ठंडा कर लो। मारपीट का नाम सुनकर बालदेव जी कैसे चुप रहे? हिंसा बात का डर है। महन साहेब, कोठारिन जी, शांति शांति से सब बात कीजिए। आहा, कोठारिन रे कोठारिन। रमपेरिया को बचपन से ही झगड़ने की तालीम मिली है। वो किवाड़ की आड़ से निकल आती है और हाथ चमका चमका कर कहती है, रोज आज पहर रात को कोठारिन की कोठरी खुलती है, संदूक की चाबी कहाँ है, गोदाम घर में क्या है, सब तो बेच बेच कर छुट्टी कर दिया। लक्ष्मी के नथने फड़कने लगते हैं, लगता है किसी ने बांस के पतली छड़ से उसकी पीठ पर छपाक से मार दिया। 12 बजे रात को कोठरी खुलती है, सब बेच बाज का छुट्टी कर दिया। सतगुरु हो, किस पाप का दंड दे रहे हो प्रभु। रामदास अपनी फेंक सियारे का मुंह बंद करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या चाहते हो तुम लोग? संदूक की चाबी के लिए कलेजा हट रहा है तो ले लो। लक्ष्मी संदूक की चाबी भी फेंक देती है। रमपेरिया अब गद्दी घर से बकर बकर कर रही है। अलबत बोल सकती है रमपेरिया, लौंगी मिर्चा की तरह वो तेज है। उसकी बातें सुनकर देह लहरने लगता है। बात में भी ऐसा झाल, लड़ी मरे बरदा बैठल खाए तुरंग, दिन भर बैठकर महात्मा जी कहता है बालदेव, कभी एक लोटा पानी भी किसी पेड़ में दे तो समझे कि हाँ। सुबह से शाम तक एना का कहीं लेकर महारानी सिंगार पटार करेगी, यहाँ कोई किसी का नौकर नहीं, मेरे देह में मैल है मन में नहीं, ऊपर से तो गमकौवा साबुन और चंपा चमेली का तेल लगाती हो, भीतर राम राम, रात भर मुंह में मुंह सटाकर सोने वाली भोर में मुंह धोकर शुद्ध तो नहीं हो सकती, नट्टिन कसबिन। रमपेरिया बड़बड़ा रही है। रमपियाड़ी बेसी मत बोलो, सिर में दर्द हो जाएगा। रामदास जी कहते हैं, ऐसा जानता तो। लक्ष्मीदासिन कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप टकटकी लगाकर नींबू के पेड़ की ओर देखती है। रंपेरिया की एक एक बात तीर की तरह उसके मर्मस्थल में गुंथ गई है। गमका हुआ साबुन और चमेली का तेल, महंत सेवादास ने उसे यही एक बहुत खराब आदत लगा दी थी। बिना साबुन के वो नहा ही नहीं सकती थी। मन पवित्र ही नहीं होता है बिना साबुन के। केशरगंज तेल तो सिर दर्द के दिन ही अब लगाती है वो। महंत साहब जब पुराने कचहरे से लौटते तो झोरी में तेल, साबुन, किशमिश अखरोट और तरह तरह का फल मेवा ले आते थे। कोई भी नई चीज बिकते देखा बस खरीद लिया। महंत सेवादास के साथ सभी तीरथ कर चुके हैं लक्ष्मी। क्या आप इसी नरक भोग के लिए? उसकी तकदीर ही खराब है, अब मठ में रहना नरकवास है। छी 10 दिन हुए प्रसाद जरा भी नहीं रुचता है। पानी में मछली की गंध पहले ही रोज लग गई थी, सो अब पानी पीते ही क्या हो जाती है। मठ पर आने के समय रंपेरिया की माया ने ठूंस ठूंस कर मछली खिला दिया था। सतगुरु हो, सब कुछ करो, पंथ मत भ्रष्ट करना गुरु, वो कल ही अलग हो जाएगी मठ से। महंत साहब उसके नाम से 30 बीघा जमीन और कलमी आमों की एक बाग लिख गए हैं, उस पर मठ का कोई अधिकार नहीं। सब एक सप्ताह में ही सदगुरु की कृपा से ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी की आंखों के आगे सपनों जैसी एक दुनिया बस रही है। कलमी आमों के बाग में ठीक बम्बई आम के पेड़ के पास 2 खूबसूरत झोपड़ियां हैं। वो चरखा चला रही है, बालदेव जी बीजक बांच रहे हैं। बालदेव जी अब आसन तोड़िए। बालदेव जी लक्ष्मी के चेहरे की ओर भकर भकर देखते हैं। जब जब वो लक्ष्मी की आंखों में खोते हैं उनका चेहरा ठीक ऐसा ही अर्थ भावहीन हो जाता है। आसन तोड़ना होगा? हाँ आसन तोड़ना होगा, यहाँ धर्म नहीं बचेगा। लक्ष्मी की आंखें डबडबा आती हैं। आ रे जोगिया के नगर बसे मति कोई, ओहो संतो जारे बसे सो जोगिया होई। डिम डिमक डिमक डिम डिमक डिमक।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।